الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. तो ये जो हमारा पीर की रात को दर्स होता है, ये दर्स कुरान होता है। मारुफुल कुरान की जिल नंबर 3 से हम सूरह मायदा की तफसीर इसमें पढ़ रहे हैं, और जो आयत अभी तलावत की गई आयत नंबर 5 है, और इसके मारुफ मसाइल हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि अभी इस आयत के पहले ही हिस्से के जिसमें अहले किताब के खाने के हलाल होने के ऊपर बात की गई है। तो उसमें हमने यहाँ पे पेज नंबर 49 तक पढ़ा था, उम्मीद आपके सामने वो पेज स्प्रेड भी होगा। तो उसमें ये बात चल रही थी कि अहले किताब के अगरचे के अकायद बहुत ज्यादा मस्ख हो चुके हैं, और उन्होंने बिल्कुल शुरू ही में बल्कि अल्लाह ताला के साथ उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने और ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों ने उनका बेटा करार देना शुरू कर दिया था, और भी बहुत सारे उनमें मसले शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने अहले किताब के अंदर इन दोनों को शामिल किए रखा, यहूद और नसारा को, और उनके तमाम को जायज़ करार दिया मुसलमानों के लिए, हलाल करार दिया। लेकिन मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने जो आखिरी हेडिंग हमने पढ़ी थी उसमें फरमाया था कि सिर्फ नाम के यहूद और नसरानी जो दर हकीकत दहरिए हैं वो इसमें दाखिल नहीं है। ठीक है, नाम के यहूद नसारा का मतलब क्या कि उनका नाम जो है वो किसी यहूदी नसारे नसरानी नाम पर हो, लेकिन वो खुद डिक्लेयर करते हो कि जी हमारा इन मजाहिब से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि हम खुदा को मानते ही नहीं हैं, या ये कहें कि हम इन मजाहिब को मानते ही नहीं, ठीक है, या ये कहें कि हम एथियस्ट हैं, दहरी का मतलब होता है एथियस्ट, हम खुदा को ही नहीं मानते, या ये कहें कि हम खुदा को तो मानते हैं लेकिन हम इन मजाहिब को सिरे से मानते ही नहीं। मतलब मजाहिब को मानने का क्या मतलब होता है, जो किताबें हैं इन मजाहिब की उन किताबों को हम नहीं मानते, ठीक है। इसी वजह से अहले किताब का लफ्ज ही इस बात पर दलालत कर रहा है कि मजहब का मतलब ही किताब है, ठीक है। तो अगर इंजील का इनकार करे तो वो ईसाई नहीं होगा, चाहे उसका नाम जॉर्ज हो या गैब्रियल हो या जो भी हो, क्रिश्चियाना हो या एनीथिंग, क्रिश्चियन नाम हो, नाम उसका क्रिश्चियन, लेकिन वो यानी इंजील का इनकार करता है। उसी तरह यहूदियों के अंदर भी यही कि अगर तौरात का इनकार करता है तो फिर दिस वुड मीन मोस्ट ऑफ द वेस्टर्नर्स, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्नर्स भी कहा जा सकता है आजकल के दौर में, अगरचे के जैसे कि हमें बज़ाहिर हॉलीवुड को देख करके ये लगता है कि पूरा अमेरिका जो है ना वो ऐसे ही है, ऐसा है नहीं। अमेरिका जो है वो अभी भी अच्छा खासा कंजर्वेटिव क्रिश्चियन मुल्क है, अभी भी अच्छा खासा कंजर्वेटिव क्रिश्चियन मुल्क है। वहां पे बहुत बड़े बड़े इलाके हैं जो कि बाइबल बेल्ट कहलाते हैं, जिनमें टेक्सास का सबसे बड़ा जो सूबा है उनका, जो कि इतना बड़ा है कि कोई शायद मुसलमान मुल्क भी इतना बड़ा नहीं होगा, सऊदी अरब के साइज से भी ज्यादा बड़ा टेक्सास का खाली एक स्टेट है, वो पूरा का पूरा जो है ना बहुत ज्यादा क्रिश्चियन स्टेट है। अजीब, हमारे यहाँ तो अभी बहस शुरू हुई है ना कि ये जो सैलाब है ये अल्लाह का अजाब है या ये हुक्मरानों का लाया हुआ अजाब है। ये तो हमारे यहाँ मुसलमान के अंदर ये वाली बहस चल रही है ना, बहुत सारे लोग नहीं नहीं इसका अल्लाह के अजाब से कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमतों को बुरा भला कहो, हुकूमतों की वजह से आया है, ठीक है।
इन अदर वर्ड्स बेसिकली हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे से कोई वास्ता नहीं है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बस हुकूमत ही रिस्पॉन्सिबल है, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने हमारे ऊपर कोई ऐसे हालात भेजे हैं। लेकिन टेक्सस के अंदर जब वहां पर फ्लैश फ्लड्स आए हैं और उनके अंदर भी बहुत ज्यादा उनकी तबाही हुई है और बहुत अमवात हुई है, क्योंकि वो जुलाई 4 के वीकेंड के ऊपर आए थे, जब सारे जो है वो अपनी वीकेंड मनाने के लिए इसी इस तरह के इलाकों में गए हुए थे, कैंपिंग वगैरह कर रहे थे, तो वो फ्लैश फ्लड आया तो वो कई यानी कई 100 अफराद जो है वो उसके अंदर मरे हैं। तो टेक्सस के अंदर जो है ना वो बाकायदा प्रेयर्स हो रही है, ठीक है ना, वो बाकायदा उन लोगों ने जो है वो अपने यानी गॉड से जो है वो प्रेयर करना शुरू किया कि भाई ये, या उनके जो जो मर गए हैं उनके मगफरत के लिए प्रेयर करना, उनके पीस के लिए प्रेयर करना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये क्रिश्चियनिटी वहां पे अभी भी बहुत ज्यादा है, बल्कि जो रिपब्लिकन्स हैं उनमें से तो अक्सर जो है वो ऐसे ही हैं। अच्छा, तो यूरोप के अंदर वेस्टर्न यूरोप को आप कह सकते हैं कि वो ज्यादातर एथियस्ट हो गया, लेकिन ईस्टर्न यूरोप भी ऐसा नहीं है, और रोम और ग्रीस और सिसिली और ये सारी जगह, और इवन साउथ अमेरिका के अंदर भी ब्राजील और अर्जेंटीना और ये चिली, इनमें भी बड़े कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस रहते हैं। तो नाम के यहूद नसारा इसके अंदर शामिल नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक बहुत अहम बात जो कि हमने पिछली दफा पढ़ तो ली थी कि भाई अली रज़ी अल्लाह तआला की तहकीक के मुताबिक जो नसारा बनी तगलब थे या तुगलब थे, तो अली रज़ी अल्लाह की तहकीक के मुताबिक वो नसारा में शामिल नहीं है, ठीक है, जबकि जो दूसरे ताबईन जमहूर सहाबा व ताबईन, ठीक है, उनकी तहकीक ये थी कि ये भी आम नसरानियों की तरह है। तो अब जो है अगर अली रज़ा के फतवे को फॉलो करके कोई उसका उनका जबी उनका जो गोश्त है स्लॉटर्ड हो या जो भी हो उसको अगर खा लेता है तो फिर वो गुनाहगार होगा, उसके ऊपर उसके रूहानी कल्ब के ऊपर स्याह दाग पड़ेगा, उसकी रूह मुतासिर होगी, ठीक है, क्योंकि ये गुनाह का काम होगा। लेकिन किस बुनियाद पर गुनाह का काम हुआ? अली रज़ी अल्लाह तआला के फतवे की बुनियाद पर, जबकि अगर जमहूर ताबईन के फतवे जमहूर सहाबा व ताबईन के फतवे की बुनियाद पर अगर वो उनका गोश्त खा लेगा तो उसके दिल के ऊपर नुकसान नहीं होगा, उसकी रूह के ऊपर नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को हमने थोड़ा पिछली क्लास के अंदर भी समझाया था, लेकिन अब इसको एक दूसरे तरीके से समझाना जरूरी था। वो ये कि जो पुराने लोग हैं वो तो पहले भी ये बात सुन चुके हैं कि हमने एक अजीब बात किसी पिछली क्लास के अंदर, काफी पहले की बात है, ये करी थी कि दो खुदा होते हैं, खुदा कितने होते हैं? दो खुदा होते, ठीक है ना। अब तो फिर कुफर का फतवा, ये तो मुशरिक हो गए क्योंकि उन्होंने खुदा को दो बना दिया। नहीं, बल्कि दो खुदा होने का मतलब क्या है कि एक खुदा सच्चा खुदा है और दूसरा खुदा झूठा खुदा है, वो खुदा है नहीं लेकिन खुदा बनने की कोशिश करता है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेइंग सच अ पॉइंट, राइट? व्हाट इज द पॉइंट इन सेइंग समथिंग लाइक दिस कि दो खुदा होते हैं? उसकी वजह यह है कि एक सच्चा खुदा तो एक ही है ना, उसको तो सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान समझते हैं, मानते हैं कि भी एक ही खुदा है सच्चा खुदा, राइट? लेकिन सच्चे खुदा के अलावा जो है ना, हम समझते हैं कि बहुत सारे खुदा हैं, झूठे खुदा बहुत सारे हैं, किसी का नाम लात है, किसी का नाम मनात है, किसी का नाम उज्जा है, किसी का नाम जो है वो आग है, किसी का नाम जो है वो गौतम बुद्ध है, किसी का नाम जो है वो फलाना है, किसी का नाम ढिमकाना है, बहुत सारे दूसरे खुदा हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि असल में दूसरा खुदा एक ही है, एक ही दूसरा खुदा, ठीक है। अब ये सच्चा खुदा जो कि अल्लाह है, तो उसका हुक्म मानना ये कामयाबी है, ये रूहानी तरक्की है, ये रूहानी कुव्वत है, सच्चे खुदा के हुक्म मानना। हुक्म मानने से ही कुव्वत मिलती है, हुक्म मानने से कुव्वत मिलती है, मुराकबे करने से कुव्वत नहीं मिलती, ठीक है ना। हम समझ रहे हैं कि हम बैठ के तस्बीहें फिर रहे हैं या जो है वो बैठ गए हैं मुराकबे में, तजल्लियात आ रही हैं तो इससे कुव्वत मिल रही है, नहीं, हुक्म मानने से कुव्वत, अहकामात पे अमल करने से कुव्वत मिलती है, ठीक है, अहकाम को मानने में और फिर उनके ऊपर अमल करने से ये रूहानी कुव्वत मिलती है। ये सच्चे खुदा का मामला हो गया। और झूठे खुदा का मामला क्या हो गया कि अगर उसका हुक्म मानेंगे तो नाकामी है, उसका हुक्म मानेंगे तो रूहानी तजलील है, रूहानी कमजोरी है, रूहानी बर्बादी है। बस सिंपल एज दैट, यही एक इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन हो गई, ठीक है। झूठे खुदा की बात मानेंगे तो बस, और सच्चे खुदा की मानेंगे तो कामयाबी, तो ताकत कुव्वत सब कुछ, ठीक है। अब मसला ये है कि सच्चे खुदा का हुक्म है क्या, कैसे हमें मिलेगा, ठीक है ना। अब सच्चे खुदा की आवाज़ तो नहीं आती, सच्चे खुदा की आवाज़ तो नहीं आती कि तुम ये करो और तुम वो करो और तुम ये ना करो और तुम ये ना करो। सच्चे खुदा की तो आवाज़ कभी भी नहीं आती, सिवाय मूसा अलैहिस्सलाम को भी आई थी, वो भी अहकाम की शक्ल में नहीं आई थी, वो कॉन्वर्सेशन की शक्ल में आई थी। अहकाम तो तौरात की शक्ल में आए थे मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी, और तो किसी के पास कॉन्वर्सेशन भी नहीं हुई सच्चे खुदा की, ठीक है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि सच्चे खुदा का हुक्म क्या है। उसी तरह से झूठा खुदा, तो झूठे खुदा की भी आवाज तो नहीं आती। अगर हम समझते हैं इस बात को कि झूठा खुदा, जैसे उन्होंने लिखा, फेक गॉड इज आवर नफ्स, मेनली इन आवर केस नफ्स नहीं, इट इज आवर नफ्स, दिस इज द ओनली फॉल्स एंड फेक गॉड, दिस इज द ओनली फॉल्स एंड फेक गॉड, ठीक है। तो नफ्स जो है उसकी भी हमें आवाज नहीं आती, उसकी भी हमें आवाज नहीं आती, ठीक है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा हुक्म जो है वो झूठे खुदा का हुक्म, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो सच्चे खुदा का हुक्म पता चलने के फिर क्या जराए हैं, किन असबाब से हमें सच्चे खुदा का हुक्म पता चलता है, यानी किन असबाब से हुक्म मिलेगा तो वो सच्चे खुदा का हुक्म कहलाएगा, उनको माखज़े शरीयत कहते हैं, माखज़े शरीयत उनको कहते हैं, ठीक है। नफ्स एंड जमीर आर सेम और नॉट, नहीं, दे आर नॉट द सेम, दे आर नॉट द सेम, ठीक है। फिरौन जैसे लोग भी झूठे खुदा में आएंगे, नहीं ना, बात ही नहीं समझ रहे, हम कह रहे हैं कि झूठा खुदा एक है और आप कह रहे हैं फिरौन जैसे लोग भी झूठे खुदा में आ जाएंगे। भाई एक है तो फिर ये फिरौन, हामान और नमरूद कहाँ से आ गए बीच में, एक तो एक होता है ना, एक को आप 10 तो नहीं बना सकते। ये तो फिर वो क्रिश्चियनिटी वाला नजरिया हो गया कि गॉड इज 3 एंड 3 इज 1, 1 इज 3 एंड 3 इज 1, हम कह रहे हैं 1000 इज 1 एंड 1 इज 1000, राइट। ये तो तसलीस जैसी कोई चीज हो गई फिर, इसका मतलब है नहीं, देर इज ओनली वन फॉल्स गॉड, ठीक है। तो खैर बात क्या चल रही है कि सच्चे खुदा खुदा के जो हुक्म हम तक पहुंचते हैं उसके जरिए क्या होते हैं, उसके चैनल्स क्या होते हैं, वो चैनल्स वो हमें पता होने चाहिए, लिख लेने चाहिए चैनल, जिनको नहीं पता अभी तक वो लिख लें। नंबर 1, कुरान अजीम शान, ठीक है। कुरान अजीम शान, जो कुरान अजीम शान से हुक्म पता चलेगा वो सच्चे खुदा का हुक्म होगा। नंबर 2, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने जो बातें फरमाई, नबी अलैहिस्सलाम ने जो बातें करके दिखाई, नबी अलैहिस्सलाम ने जिन बातों से मना किया, ठीक है, या आपके सामने जो चीजें की गई और आप सरसम ने उनसे मना नहीं किया, ये सब का सब उसके अंदर आ जाता है। इसको सुन्नत भी कह सकते हैं और इसको हदीस मुबारक भी कह सकते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यू कैन बोथ यूज बोथ वर्ड्स। तो कुरान नंबर 1, सोर्स ऑफ अल्लाह, सच्चे खुदाज हुक्म, सच्चे खुदा के हुक्म का पहला सोर्स क्या हुआ, कुरान। सच्चे खुदा के हुक्म का दूसरा सोर्स क्या हुआ, हदीस, ठीक है। सच्चे खुदा के हुक्म का तीसरा सोर्स क्या हुआ, ये जरा सा फिर मुश्किल होता है एक आम मुसलमान के लिए भी आजकल के, वो है इजमाए उम्मते, इजमाए उलमाए उम्मत, इजमाए उलमाए उम्मत, ये तीसरा सोर्स ऑफ शरी अहकाम है, तीसरा सोर्स, जिसको कि माखज शरीयत भी कहते हैं उर्दू में इसको, या अरबी में इसको माखज शरीयत कहेंगे और अंग्रेजी में इसको सोर्स ऑफ शरी हुक्म कहेंगे। तो इसको इजमा कहते हैं अंग्रेजी में, इसके लिए कंसेंसस का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और सच्चे खुदा के हुक्म के पहुंचने के चैनल्स में से चौथा चैनल, चौथा फॉर्म क्या होती है, कयास, ठीक है। लॉजिकल इन्फेरेंस, अंग्रेजी में आप इसको लॉजिकल इन्फेरेंस कह सकते हैं। लॉजिकल इन्फेरेंस ऑन व्हाट? कुरान, हदीस और इजमा। इनसे इन्फर करके, यानी इनमें जो ऑलरेडी अहकामात हैं उन अहकामात से इन्फर करके आप कोई हुक्म बनाए तो उसको कयास कहते हैं। तो कुरान, हदीस, इजमा एंड कयास, ये चार जो है ना, ये तो फिकही एतबार से सच्चे खुदा का हुक्म कहलाते हैं। ठीक है, अब एक और भी है लेकिन वो अभी हमने अभी 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 अभी, अभी नहीं बताना चाहिए उसको। ठीक है, पहले आए झूठे खुदा के हुक्म के ऊपर। झूठा खुदा क्या होता है? नफ्स, इंसान का नफ्स, ये झूठा खुदा होता है। ठीक है, तो जो अहकाम कुरान, हदीस, इजमा और कयास से टकराते हों, से कॉन्ट्रडिक्ट करते हूं, लेकिन हमारा दिल चाह रहा हो वो काम करने का, हमारा जो है वो, हमारी अकल कह रही हो वो काम करने के लिए, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उन चार सोर्सेस से जो हमें अहकाम पता चलते हैं उनसे, तो ये जो हुक्म है ये झूठे खुदा का कहलाएगा, ये झूठे खुदा का कहलाएगा। इस झूठे खुदा की भी आवाज नहीं आती, जिस तरह सच्चे खुदा की आवाज नहीं आती उसी तरह झूठे खुदा की भी आवाज नहीं आती। तो फिर कैसे पता चलेगा कि झूठे खुदा का हुक्म क्या है? ये ऐसे पता चलेगा कि अगर ये इन चार सोर्सेस से कोई हुक्म कॉन्फ्लिक्ट करता हो, उससे तजाद में आता हो, तब जो है वो झूठे खुदा का हुक्म कहलाएगा। इसके लिए आप कहें सोर्सेस, जैसे सच्चे खुदा के हुक्म के लिए हमने चार सोर्सेस पढ़े ना, कुरान, हदीस, इजमा और कयास, तो झूठे खुदा के हुक्म के भी हम तक पहुंचने के फिर मुख्तलिफ जराए होते हैं। झूठे खुदा के हुक्म के हम तक पहुंचने के भी मुख्तलिफ जराए होते हैं। वो जराए क्या होते हैं? हमारी अपनी अकल, ठीक है ना, हमारी अपनी अकल जो कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड किस्म की एक फैकल्टी और एक एबिलिटी अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है, जो कि रिस्ट्रिक्टेड बाय आवर नॉलेज, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्टेड बाय आवर नॉलेज, ये जितनी हमारी छोटी सी नॉलेज होती है उतनी जो है वो हमारी अकल एक्ट करती है उसके मुताबिक। ठीक है, तो ये इसको अकल कहते हैं। फिर आपने लिखा जैसे वसवसे, तो वसवसे का जो लफ्ज है ये शैतान के साथ मिला के बोला जाता है, शैतानी वसवसे। ठीक है, तो झूठे खुदा के हम तक पहुंचने का दूसरा जरिया क्या है? शैतानी वसवसे। ठीक है, ये बस मुस्तकिल जो है ना वो आ रहा है ख्याल, अब ये कर लो तुम, अब तुम ये जा करके फिल्म देख लो, अब तुम जा करके इस किस्म की नोवेल पढ़ लो, तुम जा करके ये दोस्तों के, उस किस्म के दोस्त जो के गैर शरी किस्म की हरकतों में लगे हुए हैं उनके साथ जा करके जरा टाइम स्पेंड कर लो, ये शैतानी वसवसे, ये झूठे खुदा के हुक्म के पहुंचने का एक जरिया है। ठीक है, अब हाँ, बैड कंपनी क्या? बुरे दोस्त, बुरे दोस्त, ये झूठे खुदा के हुक्म के हम तक पहुंचने का एक और सोर्स क्या हो गया? बुरे दोस्त, यानी बुरे इंसान जिनको कि हमने दोस्त बनाया हुआ है, बुरे इंसान जिनको कि हमने दोस्त बनाया हुआ है। और एक और, कोई और सोर्स बताएं, कोई और सोर्स, इसको एक और सोर्स आप हवा भी कह सकते हैं, हिर्स, हवा, ठीक है, जिसको के नफसानी शहवात भी कह सकते हैं आप उसको, लेकिन उसके पीछे वही शैतानी वसाविस ही होते हैं। झूठे खुदा के हम तक पहुंचने का एक और सोर्स बताएं, ठीक है, पहुंचने का एक और सोर्स बताएं, ये एक्चुअली एक भाई ने पहले से बताया हुआ है, झूठे खुदा के हम तक हुक्म पहुंचने का एक और सोर्स, जो कि ऊपर ऑलरेडी एक भाई बता चुके थे, बस उन्होंने गड़बड़ ये कर दी थी कि उसको जो है ना वो झूठा खुदा कह दिया था, लेकिन वो झूठा खुदा नहीं है, वो झूठे खुदा के हुक्म के पहुंचने का जरिया है। फिरौन, फिरौन, ठीक है, अब मसला ये, फिरौन तो मर गया 4,000 साल पहले, तो अब तो कोई फिरौन नहीं है ना, तो अब जो इस जमाने के फिरौन है, यानी हमारे लीडर, ठीक है ना, गुनाहगार लीडर, गुनाहगार आपके मुक्तदा, जिनको कि आप फॉलो करते हैं, ठीक है, गुनहगार मुक्तदा, नेक मुत्तकी मुक्तदा नहीं, बल्कि गुनहगार जो मुक्तदा होते हैं वो भी झूठे खुदा के अहकाम के हम तक पहुंचने का सोर्स बनते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मुल्कों के सरबराह भी आ सकते हैं, सियासी जमातों के सरबराह भी आ सकते हैं, अगरचे कि वो हुकूमत उनके पास नहीं है, लेकिन सियासी जमात के वो सरबराह हैं और हम उन सियासी जमात के दीवाने हुए हैं, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। उसके अंदर स्पोर्ट्स स्टार्स भी आ सकते हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स वो भी आ सकते हैं क्योंकि वो भी हमारे मुक्तदा बने हुए हैं। उसके अंदर पॉप स्टार्स भी आ सकते हैं, फिल्म स्टार्स भी आ सकते हैं, राइट, म्यूजिक स्टार्स भी आ सकते हैं। ये सब क्या हैं? ये लीडर्स हैं जिनको के हमने लीडर बनाया हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो सोशल लीडर्स हों, चाहे वो स्पोर्ट्स लीडर्स हों, चाहे वो सो कॉल्ड आर्ट्स एंड कल्चर के लीडर्स हों, ठीक है ना, इनके वास्ते से जो है वो झूठे खुदा के अहकामात हम तक पहुंच रहे, ठीक है। अब ये भाई झूठे खुदा के अहकाम कैसे पहुंच रहे होते हैं कि उनके अंदर भी तो एक झूठा खुदा होता है ना, उनके अंदर भी तो एक झूठा खुदा होता है ना, तो वो अपने झूठे खुदा के अहकाम जो हैं वो हम तक पहुंचा रहे होते हैं और हमारे अंदर जो झूठा खुदा है वो उनको एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उनको लाइक कर रहा होता है, ठीक है, उनके नफ्स से वो जनरेट होते हैं, पोलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के नफ्स से वो जनरेट होते हैं और हमारे नफ्स के अंदर वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ये चैनल बनता है झूठे खुदा के अहकाम के हम तक पहुंचने का, ठीक है। अच्छा, अब सच्चे खुदा के सोर्सेज जो थे, हुक्म पहुंचने के सोर्सेज, वो हमने आपको चार बताए, ठीक है, वो हमने आपको चार बताए थे ना, इसके अंदर एक पांचवा भी होता है। पांचवा क्या होता है कि कोई ऐसा साहिबे निस्बत, ठीक है, शेख के जिसके साथ आपने अल्लाह की खातिर अपना इस्लाही ताल्लुक बनाया, ठीक है, जिसके लिए जिसके साथ आपने अपना इस्लाही ताल्लुक, अपना इत्तेदा वाला ताल्लुक उस शेख के साथ बनाया हुआ हो अल्लाह की रजा मालूम करने, ठीक है, कि मेरी जाती जिंदगी के अंदर अल्लाह की रजा क्या होगी उसको समझने के लिए मैं अपने शेख से गाइडेंस लूंगा। तो ये शेख भी जो होता है ये भी सच्चे खुदा के हुक्मों के पहुंचने का वास्ता बन जाता है, ठीक है ना। अब वो सच्चा, वो जो शेख जो है वो एक साहिब निस्बत होना चाहिए, यानी ऊपर से उसको बाकायदा हुक्म मिला हो कि तुम इस्लाह का काम करो, इसको साहिब निस्बत होना कहते हैं। और दूसरा ये कि उसके पास शरी अहकाम का इल्म होना चाहिए, ये नहीं कि वो कोई जाहिल किस्म का इंसान हो, वो खुद ही जाहिल होगा तो आपको क्या गाइड करेगा। उलमा जो आपने कहा ना, तो उलमा तो फिर वो जो चार सोर्सेज ऑफ शरीय शरीय अहकामात है ना, कुरान हदीस इजमा और कयास, वो चार सोर्सेज ऑफ शरीय अहकामात को सीखते हैं और आगे ट्रांसमिट करते हैं जनरल पब्लिक में, तो उलमा तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं उन चार में, उलमा ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, बिकॉज एक कॉमन आदमी जो होता है वो कुरान में क्या अहकामात हैं, हदीस में क्या अहकामात हैं, इजमा के क्या अहकामात हैं और कयास से क्या अहकामात पता चलते हैं, एक आम आदमी इनका इहाता नहीं कर सकता, ये काम उलमा करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, फिर ये एक प्योर सिंपल इक्वेशन है, उम्मीद है कि आपने अपने पास कुछ छोटा बहुत जो है वो चार्ट सा बना लिया होगा इसको समझने के लिए, ठीक है। तो अब जो है ना, हाउ डज इट टाई इन टू दिस होल डिस्कशन ऑफ हलाल एंड हराम, ठीक है, वो ऐसे ही कि देखें, जब उलमा की किसी गुरोह को की जो इजमा है उसको फॉलो करके हम कोई खाना खा रहे होते हैं, उन उलमा ने इज्तिहाद किया होता है कि ये जायज है, इनका खाना, इस चीज का खाना जायज है, तो अब हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हम झूठे खुदा को फॉलो कर रहे हैं या झूठे खुदा के सोर्सेज ऑफ नॉलेज को फॉलो कर रहे हैं या सच्चे खुदा के सोर्सेज ऑफ नॉलेज को फॉलो कर रहे हैं। बड़ा सादा सा जवाब है इसका, आसान सा जवाब है कि भाई हम सच्चे खुदा के सोर्सेज ऑफ नॉलेज को हम फॉलो कर रहे हैं, हम इसके चैनल्स को, यानी इस चैनल से जो हमें पता चलता है हलाल हराम का, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम झूठे खुदा के चैनल को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि वो सहाबे कराम का इज्तिहाद है या सहाबे कराम का इजमा है, ठीक है, या उलमाए उम्मत का इजमा है, या उसकी बुनियाद पर निकाला हुआ कयास, कयासी हुक्म है। भाई ये तो सच्चे खुदा के चैनल्स है ना। अब आपके दिल के ऊपर स्याह धब्बा नहीं लगेगा, अब आपकी रूह के ऊपर कमजोरी तारी नहीं होगी। लेकिन अगर हम झूठे खुदा को या झूठे खुदा के चैनल से जो हमें इंफॉर्मेशन पहुंच रही है उसको फॉलो करते हुए कोई चीज खाएंगे या पिएंगे कि वो कह रहा है कि बस ये जायज है कर लो कुछ नहीं होता, तो फिर क्या होगा, हमारे दिल के ऊपर दाग पड़ेगा, हमारी रूह कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी एक बेहतरीन मिसाल यही मौजूद है कि नसारा बनी तुगलक, ठीक है। अब इस अली रजा जान फरमा रहे हैं कि जी ये नसारा में शामिल है ही नहीं, तो अब कोई जाकर के जो कि अली रजा जान का फतवा फॉलो करता है वो जाकर के इनका गोश्त खाएगा तो उसके रूह जो है ना वो बर्बाद हो जाएगी। और जो जमहूर सहाबा व ताबईन के मजहब को फॉलो करता है वो इनका गोश्त खाएगा, उसको कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होगा, हालांकि गोश्त तो एक ही है भाई, और उसी कौम का जबिया है वो, उसी कौम के यहां से आया हुआ गोश्त है। गोश्त फर्क नहीं है, फर्क क्या है कि आप क्यों खा रहे हैं, किसके हुक्म की बुनियाद पर वो काम आप खा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द रियलिटी, और यही चीज ओवर द क्रॉस द बोर्ड ये चीज अप्लाई होती है, ठीक है। बाकी ये क्या आगे की कुछ कुछ इबारत भी हम पढ़ लेते हैं। तमाम अहले किताब से क्या मुराद है, फरिश्ते की नेकी का इनाम जो है ना ये इस डिस्कशन के अंदर नहीं आता, वो एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में चला जाएगा। ताम अहले किताब से क्या मुराद है, ताम के लोग भी माने खाने की चीज के हैं जिसमें अजरू लुगत अरबी हर किस्म के खाने की चीजें दाखिल हैं, लेकिन जमहूर उम्मत के नजदीक इस जगह ताम से मुराद सिर्फ अहले किताब के जबाइश का गोश्त है, क्योंकि गोश्त के सिवा दूसरी अशिया खुर्दनी, खुर्दनी का मतलब खाने वाली जो अशिया होती हैं उनमें अहले किताब और दूसरे कुफार में कोई इम्तियाज और फर्क नहीं है। खाने पीने की खुश चीजें गेहूं चना चावल और फल वगैरह हर काफिर के हाथ का हलाल जायज है, इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं, और जिस खाने में इंसानी सनात को दखल है, ठीक है, इंसानी सनत को दखल है उसमें, चूंकि यानी जो आपने पकाया वकाया दाल पका दी और वो चावल पका दिया, और ये इसको इंसानी सनत यानी आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को दखल है इसके अंदर, तो उसमें चूंकि कुफार के बर्तनों और हाथों की तहारत का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए एहतियात इसमें है कि उससे इज्तनाब किया जाए, ठीक है। इसलिए नहीं कि उनका चावल जो है वो हराम है, उनकी जो है वो दाल हराम है, नहीं, बल्कि वो जिस बर्तन में आपको खिला रहे हैं ना वो पता नहीं बर्तन उन्होंने पाक भी किया है कि नहीं, उसको जो है वो साफ किया है कि नहीं, उनका हाथ जो था जिससे कि उन्होंने खाने के अंदर जो है वो हाथ डाला वगैरह, ये चीजें पाक हैं साफ हैं कि नहीं है इसका आपको नहीं पता, इसलिए एहतियात इसमें है कि उससे इज्तनाब किया जाए, बिला जरूरत शदीदा इस्तेमाल ना करें। अब जाहिर है और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और कुछ ना कुछ तो खाना है, और आप अमेरिका में यूरोप में या किसी ऐसे मुल्क में फंसे हुए हैं, तो फिर बिला जरूरत यानी फिर तो जरूरत शदीदा बन जाएगी, तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसमें जो हाल मुशरिकीन बुत परस्तों का है वही अहले किताब का भी है कि नजासत का इहतमाल दोनों में बराबर है, ठीक है। उसी तरीके से अनफॉर्चुनेटली चूंकि मुसलमानों में भी जहालत बहुत बढ़ गई है और पाकी नापाकी के उसूलों का बहुत कम लोगों को पता होता है, और हम ख्याल नहीं कर रहे होते, बहुत ही ज्यादा गंद हमने मचाई हुई है, गंद वाला मामला किया हुआ है, तो इवन मुसलमान शेफ्स भी जो होते हैं ना उनका भी जब तक कुछ एहतियात वाला मामला ना हो तो इज्तनाब करना ही बेहतर है, इज्तनाब करना ही बेहतर है। इसी वजह से जो हमारे मशायख होते थे पिछले जमाने के, तो कम से कम बाहर का तो खाते ही नहीं थे, सिर्फ घर का पका हुआ खाना, और घर में भी जो है ना वो घर वाली जो के वजू के हालत में पकाती थी, सूरह यासीन की तलावत करते हुए पकाती थी, और माशाल्लाह जो है वो नमाजी थी और परहेजगार थी। और इस तरह का अगर कोई और खानसामा भी रखा होता था तो वो भी जो है वो माशाल्लाह नेक परहेजगार होता था और पाकी नापाकी के मसाइल से वाकिफ होता था। तो उसका बना हुआ खाना, बाजार का खाने का तो इतना है कि अगर खा लिया ना तो सारा का सारा जो जो रूहानी कैफियत होती थी वो सारी की सारी सलब हो जाती, ठीक है। लेकिन इस जमाने के अंदर फिर वही बात कि अब जो है ना वो जरूरत शदीदा वगैरह के मसाइल, अब जो है वो वाले मसाइल वो मुसलमान मुआशरे के अंदर भी आ गए। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान में हैं या आप सऊदी अरब के अंदर हैं तो यहाँ पे तो सारे पाकबाज और नेक साले मुत्तकी यहाँ सारे के सारे ऐसे मिलेंगे, बल्कि अपने घर के अफराद ऐसे नहीं होते। पूरा घराना होता है, उसमें अगर कोई एक आप अकेले जो है वो दीनदार बन गए, बाकी पूरा घराना ऐसे ही होता है। आपने जो है वो शरीयत के अहकामात सीख लिए, पाकी ना पाकी के मसाइल सीख लिए, पता चला ना बेगम साहिबा को कोई दिलचस्पी है इन चीज़ों से, ना घर की जो है वो कोई और काम करने वाले को इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी है। अब क्या करें भाई, अब जो है वो जाहिर है या तो आप अपना सारा खाना खुद पकाएं, ठीक है ना, क्योंकि आप दीनदार बन गए हैं, आपने जो है वो मसाइल सीख लिए हैं, और फिर आप दूसरा कोई काम ना करें, खाना ही पकाते रहें अपना, ठीक है। या अगर आप दूसरा कोई काम करना चाहते हैं या आप दूसरा कोई काम करना आपकी मजबूरी है तो फिर तो भाई उन्हीं का हाथ का खाना आपको खाना पड़ेगा ना, ठीक है। जिसके अंदर फिर बहुत सारी तफसीर आ जाती है। यहाँ पर फिर जो इंसान का शेख होता है ना तो उसकी रहनुमाई जो होती है वो बड़ी काम आ जाती है, बड़ा फायदा दे देती है कि भाई बाहर जाके अगर खाना खा भी रहे हैं ना तो शेख के मशवरे के साथ खा रहे हैं, अपनी नफ्स की ख्वाहिश को और अपनी अकल परस्ती की बुनियाद पे ये सारे काम नहीं कर रहे, बल्कि शेख के मशवरे के ऊपर, शेख के जो है वो हिदायत के ऊपर कर रहे हैं। इसकी बरकत से अल्लाह ताला फिर उनके जो बुरे रूहानी असरात होते हैं अल्लाह ताला उनसे भी महफूज फरमा देते हैं, क्योंकि वही बात है कि झूठे खुदा की बात तो नहीं मान रहे ना, सच्चे खुदा के जो वसाइल हैं अहकामात पहुंचाने के, उन वसाइल में से किसी वसीले का हुक्म मान रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसान की रूहानियत इन हालात में भी फिर महफूज हो जाती है, ठीक है। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर बाद में दोबारा कोई पूछ लीजिएगा। खुलासा यह है कि अहले किताब और दूसरे कुफार के ताम में जो फर्क शरण हो सकता है वो सिर्फ उनके जबाएह के गोश्त में है, इसीलिए आयत मज़कूरा में बइत्तिफाक उम्मत ताम अहले किताब से मुराद उनके जबाएह, ठीक है। इमाम तफसीर कुतुबी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि लफ्ज़ आम हर खाने की चीज के लिए बोला जाता है जिसमें ज़बाएह भी दाखिल हैं, जैसे कि डिक्शनरी में तो हर चीज के लिए बोला जाता है जो भी खाई जाती है, और इस आयत में ताम का लफ्ज़ खास ज़बाएह के लिए इस्तेमाल किया गया है यानी स्लॉटर्ड। अक्सर उलमाए तफसीर के नज़दीक और अहले किताब के ताम में से जो चीज़ें मुसलमानों के लिए हराम हैं वो इस उमूम खिताब में दाखिल नहीं है, ठीक है। यानी शराब जो कि मुसलमान के लिए कतअन हराम है वो इसमें दाखिल नहीं है कि अहले किताब का सूअर खा सकते हैं, अहले किताब की शराब पी सकते हैं, ठीक है, ये नहीं है, बल्कि अहले किताब का जबीहा खा सकते हैं, अहले किताब का झटका भी नहीं खा सकते, यानी जिसको के फेंक करके जो है वो मार दिया गया हो, चोट से मर गया हो, लेकिन अहले किताब के घर में उसको खाया जा रहा हो, उसको मुसलमान नहीं खा सकते, ठीक है। Is it permissible to keep non-Muslim house help or is this related to food only? House help का भी यही मामला है कि प्रेफर तो मुसलमान को ही करना चाहिए, ठीक है। इवन जनरल हाउस हेल्प के लिए जैसे सफाई और कपड़े धोना और यानी प्रेफरेंस की बात है, और वही है कि कैसे आपके हालात हैं, क्या आपको कोई मुसलमान हेल्प मिल ही नहीं रही तो फिर आपको नॉन मुस्लिम लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इवन उसमें भी जो है ना खाना पकाने वाला मामला कम अज कम बेयर मिनिमम कि उस नॉन मुस्लिम शेफ से या नॉन मुस्लिम मेड से खाना ना पक, ठीक है, ये तो बेयर मिनिमम एहतियात है। खुद पका रहे हैं यार, कच्चा पक्का जैसा भी पका रहे हैं खुद पका करके खा, उससे ना पक, ठीक है। नॉन मुस्लिम जो है देखिए, एक तो होती है ना फिजिकल नापाकी, फिजिकल नापाकी से बढ़ करके होती है जिसको के रूहानी नापाकी भी कहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि बात हुई ना अभी पीछे कि भाई घर की खातून पका रही हैं, नमाज नमाजी हैं, तो भाई नमाजी होने का क्या ताल्लुक खाना पकाने से? क्योंकि रूहानी पाकी है उनके अंदर, कुरान मजीद की तिलावत करके पका रही हैं, या अगर तिलावत नहीं कर सकती हैं तस्बीह करते हुए खाना पका रही हैं, तो भाई तस्बीह करने से खाने के हलाल हराम का क्या ताल्लुक? नहीं है कोई ताल्लुक, लेकिन वो रूहानी असरात आते हैं। ये सारा का सारा दीन जो है वो रूहानी असरात ही का तो नाम है, और है क्या ये? अगर रूहानी असरात की हम नफी कर दें तो भी दीन में बच क्या जाएगा उसके बाद भाई? खाली वही उठक बैठक, चक्कर काटना और टक्करें मारना, बस यही फिर आपका दीन रह जाएगा अगर रूहानी असरात को खत्म कर दिया जाए इसके अंदर से। भाई जब रूहानी असरात हैं तो फिर वो पढ़ते हैं ना, ठीक है? अहले किताब अगर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ना कहें तो भी, जी पहले की शायद पढ़ चुके हैं और आगे भी चीजें आ रही हैं कि वो तो अगर मुसलमान भी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ना पढ़े तो भी उसका जायज होता है, और फिर आगे और भी बहुत सारी तफसील है। वो इनकार ना करता हो इसका, असल चीज इनकार करना, ठीक है? भूल जाए पढ़ना तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद इमाम कुर्तुबी में, तो इमाम कुर्तुबी ने मजीद तफसील इस तरह से बयान फरमाई है, इमाम कुर्तुबी ने मजीद तफसील इस तरह बयान फरमाई है कि उलमा के दरमियान इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि वो चीजें जिनमें ज़बह की जरूरत नहीं होती, मसलन वो खाना जिसमें तसर्रुफ नहीं करना पड़ता, जैसे मेवा गंदम वगैरह, उसका खाना जायज है। यानी उसको कोई ज़बह वबा नहीं करना होता, तसर्रुफ करने का मतलब यहाँ पर ज़बह वबा नहीं करना होता उसको, तो उसका खाना तो जायज है, इसलिए कि इसमें किसी का मालिक बनना चंदा मुजर नहीं है। यानी कि मालिक बन करके आप खाएंगे तो फिर आपके लिए मुजर नहीं होगा। ओके, तो मतलब वो खाना जिसमें इंसान को कुछ अमल करना पड़ता है उसकी दो किस्में हैं। एक वो कि जिसमें कोई ऐसा काम करना पड़े जिसका दीन से कोई ताल्लुक ना हो, मसलन आटे से रोटी बनाना, जैतून से तेल निकालना वगैरह, तो काफिर जिम्मी की ऐसी, काफिर या जिम्मी, ठीक है, जो कि काफिर ही होता है लेकिन मुसलमान मुल्क के अंदर प्रोटेक्शन के तहत रह रहा होता है, उसको जिम्मी कहते हैं। तो काफिर जिम्मे की ऐसी चीजों से अगर कोई बचना चाहे तो महज तबीयी कराहियत की बिना पर, ठीक है? यानी क्या पता उसका हाथ कैसा था, उसने जो बर्तन को साफ किया था कि नहीं किया था। और दूसरी किस्म वो है कि जिसमें अमल जबाह करना पड़ता है जिसके लिए दीन और नीयत की जरूरत, यानी जानवर, ठीक है, मुर्गी हो या दूसरा कैटल हो, तो कैटल हो तो उसको दवा करना पड़ता है ना, तो उसमें फिर दीन और नियत की जरूरत है। तो अगरचे कयास का तकाजा ये था कि वो काफिर की नमाज और इबादतों की तरह उसका अमले जबाह भी कबूल नहीं होना चाहिए था, जिस तरह काफिर की नमाज कबूल नहीं है, इबादतें दूसरी कबूल नहीं है, तो उसका अमले जबाह भी कबूल नहीं होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने इस उम्मत के लिए खास तौर पर उनके जबाए हलाल कर दिए, और हजरत अपने अब्बास सुल्तान की नस ने इस मसले को खिलाफ कयास साबित किया है, ठीक है? यानी क्या कि कयास जो है, देखें हमने पीछे कयास का आपको बताया ना कि अहकाम शरिया के सोर्सेज में से एक सोर्स कयास होता है, ठीक है? लेकिन वो कयास का मतलब क्या होता है? कयास का मतलब होता है कि उलमा ने अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए जो चीज कुरान हदीस या इजमा से साबित हो चुकी थी उसी से नतीजा निकाला, इन्फर किया, कंक्लूजन निकाला, ठीक है? और किसी ऐसी चीज को जिसके बारे में कोई हुक्म ना कुरान में मौजूद मिला था, ना हदीस में मिला मौजूद था, ना जो है वो इजमा में कोई मिला मौजूद था मौजूद मिला था, तो उसके ऊपर अभ्यास करके, ठीक है? तो इसके अंदर भी अकल इन्वॉल्व हुई ना, अगरचे के उलमाए उम्मत की अकल इन्वॉल्व हुई, किसी आम अनपढ़ इंसान की अकल इन्वॉल्व नहीं हुई, आलिम की अकल इन्वॉल्व हुई, लेकिन अगर कोई नस उसके मुकाबले में आ जाए, नस के का जो लफ्ज है ये सिर्फ कुरान और हदीस के लिए बोला, नस नून सौद, ठीक है? तो अगर कोई कुरान मजीद की कोई चीज मिल जाए या हदीस मुबारका से कोई चीज सराहतन मिल जाए तो फिर इवन कयास को भी जो है वो रद्द कर दिया जाए, ठीक है? बहरहाल यहाँ पर तो यह है कि भी कयास का तकाजा ये था कि ये भी नाजायज होना चाहिए, लेकिन नस आ गई ना, कुरान मजीद ने हुक्म फरमा दिया कि भैया ये जायज है। उसी तरह यहाँ पे जो फरमाया है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की नस ने, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की नस का मतलब क्या, वेन, उनकी वेन ने, क्योंकि नस उसको भी तो कहता है ना, नून सीन होता है वो, तो नहीं, बल्कि इब्ने बास बताना है, नबी अलैहिस्सलाम की कोई बात बताई कि उन्होंने ऐसे फरमाया था, ऐसे क्या, तो वो भी एक नस हो गई, ठीक है। तो अब ये खिलाफ कयास जाना पड़ेगा, यानी खिलाफ अकल जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अकल जो है ये महदूद है, ये अल्लाह की अकल और अल्लाह के जो समझ है, अल्लाह की जो हिकमत, अल्लाह के लिए अकल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, अल्लाह के लिए हिकमत का लफ्ज इस्तेमाल, तो उसको सुपरसीड नहीं कर सकते, ठीक है। खुलासा ये है, एक मिनट, क्या लिखा आपने, अगर अहले किताब मुशरिक हो, यानी अल्लाह की वहदानियत का कायल ना हो, अगर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझता हो, तो भी जायज होगा उनका ज़बिया। आपको तो बच्चों हमने जवाब भी नहीं देना इसका, ठीक है, पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग सुन या पीछे जाके किताबें पढ़ लीजिए। खुलासा ये है कि ताम अहले किताब से मुराद साहित्य में बा इत्तेफाक उलमाए तफसीर वो ताम है जिसकी हिल्लत मजहब और अकीदे पर मौकूफ, यानी जमीन, इसीलिए इसी ताम में, इस ताम में अहले किताब के साथ इम्तियाजी मुआमला किया गया है, क्योंकि वो भी अल्लाह की भेजी हुई किताबों और पैगंबरों पर ईमान के मुद्दई हैं, ठीक है, यानी किताब के मुद्दई, हाँ ये किताब जो है वो अल्लाह की भेजी किताब है, इसके वो दावेदार हैं। बस अगर उनकी, अगरचे उनकी तहरीफात ने उनके दावे को मजबूर कर दिया, यानी तहरीफ कर दी कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, कोई फर्क नहीं, ठीक है, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं और आपके सवाल का भी यही जवाब है कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था, जो उस वक्त भी ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद इस बात को फरमा दिया कि वो अल्लाह का बेटा कहते हैं ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, इससे उनके जबीहे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां तक कि शिर्क कुफर में मुब्तला हो गए, बखिलाफ बुत परस मुशरिकीन के कि वो किसी आसमानी किताब या नबी या रसूल पर ईमान लाने का दावा भी नहीं रखते, और जिन किताबों या शख्सियतों पर उनका ईमान है वो ना अल्लाह की भेजी हुई किताबें हैं, जैसे रामायण पर हिंदुओं का ईमान, ठीक है ना, तो रामायण कोई थोड़ी अल्लाह की भेजी हुई किताबों में कोई प्रोविन है कि जो कि अल्लाह की भेजी हुई किताब है। हाँ, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो अल्लाह की भेजी हुई किताब है, लेकिन उनके ख्याल से तो नहीं शरीयत के फैसले किए जाते हैं ना, तो रामायण का कोई दलील नहीं है हमारे पास, पक्की दलील नहीं, इंजील और तौरात की पक्की दलील है, तो इस वजह से उसको जो अल्लाह की किताब मानते हैं उनका ज़बीहा हलाल होगा, हत्ता कि इवन जबूर को भी जो अल्लाह की किताब मानते हैं उनका ज़बीहा भी हलाल होगा, वो पीछे पड़ चुके हैं। जिन किताबों अहले किताब का ज़बीहा हलाल होने की हिकमत और वजह, अब ये हिकमत और वजह जो है ये हम जाहिर है अभी क्लास में ही पढ़ सकते हैं, अभी तो नहीं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि भाई जब अल्लाह का हुक्म तय हो गया कि ये अल्लाह का हुक्म है, तो फिर हिकमत की डिस्कशन करने की क्या जरूरत, ठीक है, लेकिन जो हमारे मशायख ने हिकमतों की डिस्कशन करी भी है ना, उसकी भी हिकमत है, उन्होंने भी खामखा डिस्कशन नहीं करी, बल्कि किसी वजह से ये सारी डिस्कशन करी है, वो इंशाल्लाह हम जैसे जैसे इसको और पढ़ेंगे तो वो भी चीज़ हमारे ऊपर इंशाल्लाह खुलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए और बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए, व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम। क्या लिखा आपने, अब ये तो टाइम खत्म हो गया, जब कोई सच्चे खुदा के जराए से पूछी हुई कोई बात पर अमल करे मगर इसलिए अमल करे क्योंकि उसे सही लगी, तो क्या ये अपने नफ्स की बात मानना नहीं हुआ, यानी छोटे खुदा, या फिर जैसे कुछ लोग अपने मर्जी से कुछ बातें किसी उलमा की मानते हैं, कुछ किसी और उलमा की मानते हैं। नहीं, पहला वाला मामला जो है ना वो तो आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि मान तो वो सच्चे खुदा के जराए से ही किसी चीज में है ना, अब उसका दिल भी उसके ऊपर मुतमईन है, तो ये तो एक एडेड एडवांटेज हो, ये तो एक 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 एडिशनल बेनिफिट हो गई उसके लिए, ठीक है, कि उसका दिल भी उसके ऊपर मुतमईन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो ये कंडीशन बना दे कि नहीं, जब तक मेरे अकल में ये समझ में नहीं आएगी तब तक मैं उसको नहीं मानूंगा, फिर वो झूठे खुदा पे अमल करने वाला हो, फिर वो झूठे खुदा का मानने वाला कहलाएगा, कि उसने शरीय अहकामात को कंडीशनल कर दिया अपनी अकल के ऊपर, फिर तो ये झूठे खुदा का मानने वाला, ये सच्चे खुदा का मानने वाला नहीं, ठीक है। और जो आपका दूसरा पार्ट सवाल का है कभी किसी की मानते हैं, कभी किसी की मानते हैं, तो ये एक टिपिकल सिनारियो होता है झूठे खुदा की। असल में ये झूठे खुदा की मान रहा है, उलमा की भी जो है ना ये कंडीशनल ही है ना इसका। इस ग्रोह ऑफ उलमा की बात इसकी अकल में समझ में आएगी तो उनकी मान लेगा, और उस ग्रोह ऑफ उलमा की बात अगर इसकी अकल में आएगी तो उनको मान लेगा, और इसकी नहीं आएगी तो इनको नहीं मानेगा, उसकी नहीं आएगी तो इनको नहीं मानेगा। ये झूठे खुदा का पैरोकार, ये झूठे खुदा का मानना है। ठीक है, अच्छा सवाल है आपका, बस थोड़ा बहुत से पहले कर लेते तो शायद कुछ और लोग भी सुन लेते हैं, लेकिन इसको फिर रिकॉर्डिंग में तो इंशाल्लाह कैप्चर हो गया होगा। जजाकुल्लाह खैर, अस्सलाम।